Hare Krishna, this class on Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 10th Chapter, Shloka number 4, given in Faridabad Temple on 10th December 2015 by myself, Prashant Mukund Das.
Daya Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari Yashoda Nandan Braja Jan Ranjana Yashoda Nandan Yamuna Tira Manichari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Radha Govind Radha Govind Radhe Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman Jaya Gauranita Jaya Gauranita Gauranita Jaya Gauranita Jaya Gauranita Jaya Gauranita Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada
श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री पंचतत्व गौर निताय की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंद ग्रंथ राशि में भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरिते नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हमारा आज का अध्याय है सृष्टि के विभाग, जो कि दसवां अध्याय है तीसरे स्कंद का। तो आज हम इसके चतुर्थ श्लोक को वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें मैत्री जी वर्णन कर रहे हैं। तो इसको पढ़ेंगे। मैत्री उवाच विरचो अपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मनि आत्मनमवेशः यथा अह भगवान जम। अंदर यहाँ पर मैत्रेय जी कह रहे हैं, तो समझना चाहिए कि ये मैत्रेय मुनि किससे कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके फिर श्लोक पर वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो मैत्रेय मुनि जो है यहाँ पर विदुर जी से उनको उन्होंने जो प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर दे रहे हैं। तो विदुर जी जो है वो महाभारत में तीन जो भाई हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, जो दासी पुत्र हैं, जो कि धर्मराज यमराज का अवतार यहाँ पर उनके कारण हुआ है, उनका अवतार है। तो विदुर जी जो है वो धृतराष्ट्र और दुर्योधन के द्वारा जब अपने घर से निकाल दिए जाते हैं, महल से, हस्तिनापुर से, तो सोचते हैं कि अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरी काफ़ी बेइज्जती कर दी है। तो जब उनका सब कुछ ले लिया, उनसे सब कुछ कहा, तुम अपनी गद्दी छोड़ दो, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ और बस हमारे महल को जल्दी से छोड़ दो, क्योंकि तुम हमारे दुश्मन जो है पांडु पुत्र पांडवाल, उनकी तुम सहयोग करते हो, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। तो विदुर जी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो विदुर जी बहुत अच्छे भक्त हैं, तो इसलिए जो भक्त होता है वो आसक्त नहीं होता। पांडवाज में वो बहुत, उनको अच्छा लगता था उनका सहयोग करना, लेकिन वो घर परिवार में इतने आसक्त नहीं थे। उनके लिए सब कुछ, सबसे ज्यादा सर्वोपरि था कृष्ण भक्ति करना। लेकिन यहाँ पर वर्णन है कि विदुर जी जब उनको घर से निकाला गया, हस्तिनापुर से, महल से, तो हो सकता था कि वो सीधे भगवान के पास द्वारका चले जाते, वहां जाकर द्वारकाधीश के शरण ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन वो सीधा द्वारका नहीं गए, उन्होंने पहले क्या किया, अनेकों अनेकों स्थानों पर भ्रमण करने का सोचा। जैसे तीर्थ यात्राओं पर या फिर धाम यात्राओं पर जाने का सोचा, जिसके कारण उनके क्या हो सके, जो भी असत्संग के कारण उनके उन्होंने पाप अर्जित कर लिए हैं उनके निवृत्ति हो सके। कहते हैं भगवान की शरण में तभी कोई व्यक्ति जा सकता है जब उसके सारे पाप समाप्त हो चुके हों। जैसे भगवत गीता के अंदर वर्णन होता है, भगवत गीता कहती है, येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद मोहं निर्मुक्तं भजन्ते मां दृढ़ताम्। भगवत गीता के सातवें अध्याय में आता है, येषां तु अंतगतं पापं, जिनके पापों का अंत हो गया हो, जनानां पुण्य कर्मणां, और उनके पुण्य जो है सामने आ गए हो, द्वंद मोहम निर्मुक्तम, और फिर वो जो संसार के द्वंद है और जो आसक्ति है उससे जब मुक्त हो जाएगा तब वो क्या कर सकता है, भजते माम दृढ़ताम, तब वो दृढ़ता पूर्वक भगवान का भजन कर सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो हम पाप कैसे काट सकते हैं और पाप करने की प्रवृत्ति कैसे काट सकते हैं, तो जैसे पाप काटने के लिए यहाँ पर बुधिर जी ने जो उदाहरण दिया है, धाम यात्रा या फिर तीर्थ यात्राओं पर जाने से, भक्तों का संग करने से, श्रवण कीर्तन करने से हमारे पाप जो है समाप्त हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति फिर भी कॉन्शियसनेस में चलती रहती है। जैसे हमने भी प्रक्रिया को, भक्ति मार्ग को पकड़ा है, लेकिन अभी एकदम से ये जो मन में चलती रहती है चीजें, पुरानी प्रवृत्तियां वो अभी भी हैं, तो प्रवृत्तियां समय लगती हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपने उदाहरण में, जिस प्रकार से पंखे का बटन बंद कर देने से पंखा नहीं रुकता, आपके घर में पंखा है उसका बटन बंद कर देने से तुरंत नहीं रुकता, कुछ समय देर बाद जाकर वो रुक जाता है, तो ऐसे ही अभी हमने पाप का बटन तो बंद कर दिया है, नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रवृत्तियां अभी भी हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, सिंसियरिटी से ध्यान पूर्वक जो इस भक्ति मार्ग को पालन करता रहेगा वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी प्रवृत्तियों से, कूटम बीजम, इनसे भी निवृत्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए उत्साह पूर्वक भक्ति मार्ग का पालन करना पड़ेगा। जैसे कई लोग बोलते हैं आप भगवान को कैसे शरणागत हैं, तो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन भक्ति में एक और प्लेटफॉर्म है, भक्त बताते हैं, जो कि है चेतना का प्लेटफॉर्म, मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ आत्मा और चेतना, सोल कॉन्शियसनेस, ये जो है एक लेवल, इससे भी शरणागत होना चाहिए। मनसा तो हो सकते हैं मन से बोल दें, वचन से बोल दें, कर्मों से हो जाए, लेकिन जो चेतना है वो अशुद्ध रहती है, तो चेतना को सबसे अच्छा तरीका है इस कलयुग में इस चेतना से शुद्ध करने का, भगवान का हरिनाम संकीर्तन। तो इसीलिए बोलते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा संकीर्तन करना चाहिए, जैसे जोर जोर से भगवान के नामों का उच्चारण संग में बैठकर, भक्तों के संग में बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से बोलना चाहिए। और संकीर्तन, प्रभुपाद जी ने एक और संकीर्तन बताया, कौन सा संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवत गीता का जो वितरण है ये भी एक प्रकार का संकीर्तन है। प्रभुपाद जी कहते हैं मृदंग की जो आवाज है वो तो एक कमरे तक रहती है, लेकिन भगवत गीता वितरण करने से अनेकों लोगों का जीवन बदल जाता है। तो इसलिए भगवत गीता को भी क्या मानना चाहिए, एक संकीर्तन मानना चाहिए। इसलिए भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूशन करने से टारगेट अचीव हो ना हो, लेकिन एक चीज तो है कि व्यक्ति भक्त बन जाते हैं, और दुनिया बने ना बने एक व्यक्ति तो भक्त बनता है, कौन, हम खुद। क्योंकि जब हम भगवद गीता का वितरण कर रहे हैं इस चेतना से कर रहे हैं कि ये क्या है, संकीर्तन आंदोलन की वृद्धि करना है, तो फिर हमारी चेतना शुद्ध होती है। यही कलयुग का तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। नास्तेव 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 गति रहने था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भगवान के नामों का जोर जोर से कीर्तन करना, जप करना, और भक्ति में मार्ग में भगवद गीता जैसे अनेक पुस्तकों का वितरण करना। तो विदुर जी ने इस तीर्थ यात्राओं में जाकर अपने पाप को निवृत्त करने का सोचा, वहां जाकर साधु संग करने का सोचा, और जब वो निकले तो प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर उनको पता चला कि जो द्वारका में यदुवंशी हैं उन्होंने क्या किया, आपस में युद्ध कर अपना विनाश कर लिया है। और फिर वो आगे सरस्वती नदी के किनारे जाते हैं, और वहां से सौराष्ट्र होते हुए मत्स्या कुरुंजला ऐसे अनेकों स्थानों से विवरण करते हुए यमुना नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां पर वो भगवान के प्रिय मित्र उद्धव जी से मिलते हैं। और उनसे भी कई प्रश्नोत्तर होने के बाद में उद्धव जी उनको बोलते हैं कि आपको ज्ञान देने के लिए कौन है? मैत्रेय मुनि। तो आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए। भगवान श्री कृष्ण बोल के गए थे कि जो भी ज्ञान देना है भागवतम का, वो किसको देना है? आपको विदुर को देना है। विदुर मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं, तो वो आपके पास आएंगे, आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मैत्रेय मुनि और उद्धव जी ने ही भगवान को अंत समय में, जब भगवान अपने गोलोक धाम गमन कर रहे हैं, तो भगवान के आदेशों को सुना है। तो इसलिए विदुर जी फिर वहां से यमुना नदी के किनारे से होते हुए कहां पहुंचते हैं? हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। और वहां जाकर मैत्रेय मुनि से अनेकों प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार से भक्त बनना चाहिए, सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो उसमें यहाँ पर सृष्टि के विभाग में उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं कि मैत्रेय उवाच विरचो अपि तथा चक्रे दिव्यं वर्ष शतम तपः आत्मन्यम आत्मनम आवेश यथा अहम भगवान जह। परम विद्वान मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा। तो ब्रह्मा जी जब भगवान नारायण की नाभि से उत्पन्न होते हैं, तो सबसे पहले वो त और प दो अक्षरों को सुन पाते हैं, और उसके कारण वो 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते हैं और दिव्य तप करते हैं और अपने आप को भक्ति में लगा के रखते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि तप और दिव्य तप में क्या अंतर होता है। जैसे बताते हैं, तपस्याएं तो सभी लोग करते हैं, जो भक्त हैं वो भी करते हैं, जो अभक्त हैं वो भी करते हैं। जैसे कई लोग पूछते हैं, आप कितने बजे उठते हैं? कहो जी, हम तो 4 बजे उठते हैं, 4:30 मंगला आरती करते हैं। तो लोग बोलते हैं, हम भी 4 बजे उठते हैं, तो आप क्या करते हैं? बोले, हम बच्चों के स्कूल का टिफिन बनाते हैं। या फिर आप क्या करते हैं? बोले, हम कुत्ते को लेके घुमाने लेके जाते हैं गार्डन में। हाँ, कुछ लोगों से पूछो कि कितनी तकड़ी तपस्या करते हैं, कितने नौकरी करते हैं? 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे नौकरी करते हैं, ओवर टाइम शिफ्ट, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते हैं। लेकिन तपस्या तो वो भी है। IAS का एग्जाम क्लियर करना हो, प्रभु जी बता सकते हैं कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 10 घंटे, 11 घंटे एक ही सीट पर बैठे रहते हैं, उनके जो है बैठे बैठे पूरा शरीर उनका दर्द करने लगता है, साइटिका, अर्थराइटिस, पता नहीं कितने प्रकार के पेन हो जाते हैं। क्यों? ये भी तपस्या है ना। इस भौतिक संसार में उत्तम स्तर पर आने के लिए भी तपस्या है, लेकिन ये दिव्य तपस्या नहीं है। देखिए, जो गायक है, गायक भी तपस्या करते हैं, सुबह उठकर रियाज करते हैं 4 बजे, बहुत सारी चीजों का परहेज करते हैं, ठंडा नहीं लेंगे, खट्टा नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से जब भक्त होता है ना, उसको भी सोचना चाहिए कि ये जो भगवत प्राप्त करना है, भगवत प्रेम, ये इतना सरल नहीं है, इसमें भी कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा और कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। जब जो रेसर होते हैं, जो रेसिंग करते हैं, वो लोग कितनी चीजों का त्याग करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठेंगे, ट्रैक पर जाकर अपनी प्रैक्टिस करेंगे और दूध पिएंगे, इसमें वो भी डालते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी पाउडर्स डालते हैं, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी बोलते हैं फिर बाद में। तो इस तरह से अनेकों चीजों को वो ग्रहण करते हैं। तो हमें भी, हमारा बूस्ट क्या है? भागवत क्लास, श्रीमद भागवत क्लास में आना, श्रीमद भागवतम इज द सोर्स ऑफ माई एनर्जी, ऐसे करके बोलना चाहिए, या मंगला आरती इज द सोर्स ऑफ माई एनर्जी, हरे कृष्ण महामंत्र इज द सोर्स ऑफ माई एनर्जी, क्योंकि ये सारी एनर्जेटिक शक्तिमान श्री कृष्ण से आ रही है और हम उनकी शक्तियों को ग्रहण कर सकते हैं उनकी सेवा में लगकर। तो इस तरह से ऋषभ देव भगवान जो थे, उन्होंने अपने पुत्रों को बताया दिव्य तप के बारे में। वो कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अहर्त विष्ट भुजाएं तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सुखायं तु अनंतम। उसमें भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि संसार में मनुष्यों को इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत कठिन श्रम करते हैं। एक व्यक्ति तो मिले थे दिल्ली में, उनसे पूछा, आप रोज कहाँ से आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? कहते हैं, हम आगरा के रहने वाले हैं, दिल्ली में नौकरी करते हैं रोज, कितना तगड़ा तपस्या करते हैं। एक बार हम चेन्नई गए थे, तो चेन्नई से मदुरई में जब उतरे एयरप्लेन से, तो वहां पे एक व्यक्ति मिले, उनसे पूछा कि हमें यहाँ स्थान में जाना है। कह रहे, अच्छा आप जाइए। कह रहे, आप यहीं के रहने वाले? कह रहे, नहीं, रहता तो मैं चेन्नई में हूँ, पर रोज मदुरई आता हूँ नौकरी करने। इतने दूर दूर से लोग तपस्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या, नौकरी करने के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इतना कुछ करता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर व्यक्ति खेती
या गाय रखने लग जाए तो फिर उसको इतनी दूर दूर ट्रेवल करके सिर्फ कुछ धन कमाने की आवश्यकता नहीं है ना? वो ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है, इसके कारण वो इतनी दूर 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 जाता है ज्यादा से ज्यादा कमाने की इच्छा। जैसे इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, डॉग्स एंड हॉग्स, कुत्ते और सुअर, बताते हैं सुअर जो होता है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा शक्तिहीन जब हो जाता है तो नए ताजा मल की तलाश में जाता है। मल तो आसानी से मिल जाएगा उसको रोड पे, और मल को खाकर शक्तिशाली बन जाता है। फिर क्या करता है, फिर वही स्त्री संग, फिर वही ढूंढेगा फीमेल पिग, सुअर के साथ में जाकर क्या करेगा, संग करेगा, और सोचेगा मैं बड़ा सुखी हूँ, इंद्रिय सुख में हूँ। तो बस हम क्या करते हैं, जाते हैं कुछ धन कमाते हैं, उससे अर्जित खाना भोजन लाते हैं, उस भोजन को खाते हैं, फिर शक्तिशाली हो जाते हैं, रात्रि अपने काम सुख में या फिर विश्राम में निकाल देते हैं, सुबह उठ के फिर नौकरी में भाग जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारा मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं हुआ है। किस लिए हुआ है, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, हमको दिव्य तपस्या करने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है। तो दिव्य तपस्याओं को हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से दिव्य तपस्या करनी चाहिए। बताते हैं दिव्य तपस्या जिस प्रकार से अपनी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे बताते हैं सांप, सांप जो होता है उसको सपेरा वो जानता है, किस प्रकार से पकड़कर लाना है सपेरे को, जानता है सांप को, उसको पता भी ये डेंजर है, इस काट भी सकता है, लेकिन वो सांप को पकड़ के लाता है और उसके बाद में फिर उसके जो विषैले दांत हैं, दंश है, उसको तोड़ देता है और उसके बाद पिटारी में बंद कर देता है और फिर उसको ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग क्या देता है, नाचने की, कौन सी धुन पे, नगीन नागिन, कौन सी धुन होती, नचाता है उसको। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को मालूम है ये बहुत मुश्किल है, काट भी सकती हैं ऐसी स्थिति में, लेकिन उन्हें वापस लाना है, उनके विषैले दंत तोड़ देने हैं। अब विषैले दंत क्या है, उनको उन चीजों से हटाना है, जैसे ये आंखें हैं, इनको ज्यादा सुंदर चीजें देखने की आकर्षण है, सुंदर चीजें देखना चाहती हैं, तो इनको देखने में क्या लगाएं, राधा गोविंद सीताराम लक्ष्मण के विग्रह को देखने में लगाएं। ये नाक, ये डिओड्रेंट सूंघना चाहती है, इसको कहां लगाएं, भगवान के तुलसी दल और भगवान के पुष्प को सूंघने में लगाएं। ये कान, ये बुराई सुनना चाहते हैं, तो इनको कहां लगाएं, इनको लगाएं भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन सुनने में। ये जिह्वा, ये हमेशा कुछ भी खाने के लिए आतुर रहती है, तो इसको कहां लगाएं, इसको लगाएं भगवान के नाम जप में, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने में। और ये जो त्वचा, ये त्वचा, इस त्वचा के लिए हम इतनी क्रीम पाउडर लगाते हैं, पॉन्स और पता नहीं क्या क्या, तो इस त्वचा के लिए क्या करना चाहिए, इस त्वचा से हमें वैष्णवों का आलिंगन करना चाहिए, इस त्वचा से तुलसी को माला से जप करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं इनके विषैले दंत टूट जाएंगे, देखने में तो इंद्रियां दिखेंगी, सांप दिखेगा लेकिन वो सांप जहरीला नहीं होगा। और फिर उसको ट्यून पे, कौन सी ट्यून पे ट्रेन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से इसको ट्यून को जो हरे कृष्ण महामंत्र के ट्यून पे ट्रेन करना चाहिए। जब नए नए लोग आते हैं मंदिर में, उनको बोली नाचिए तो बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे हम इस उम्र में नाचेंगे, 30-40 साल 50 साल के आदमी कोई नाचते हैं क्या, ये तो बच्चों का काम होता है। लेकिन धीरे 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 आते आते और फिर क्या होता है, जब प्रभुपाद जी के मोमेंट में सुनते हैं, धीरे 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 अपने आप ही मृदंग करताल की आवाज सुनते ही तो फिर उनके पांव अपने आप हवा में उठने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो भी नृत्य करने लग जाते हैं। कहते हैं भगवान के आगे जो नृत्य करता है उसको फिर संसार के आगे नृत्य नहीं करना पड़ता, तो इसलिए भगवान के आगे नृत्य करना चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंच तत्व गौर निताय की जय, पते पावन श्रील प्रभुपाद जी की जय। और जो दुर्योधन धृतराष्ट्र है और ध्रुव महाराज है, एक बार चर्चा कर रहे थे इन दोनों में क्या फर्क है, तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने ज्ञान दिया, सत्संग दिया, तो आप लोग भी आते हैं सत्संग सुनते हैं, और धृतराष्ट्र को भी सत्संग मिला, किससे मिला, विदुर जी ने उनको ज्ञान दिया। लेकिन विदुर जी के सत्संग देने के बाद भी धृतराष्ट्र क्यों नहीं बदल रहे थे, जानते हैं, इसलिए नहीं बदल रहे थे क्योंकि वो साथ साथ असत्संग भी कर रहे थे, शकुनि का, दुर्योधन का और फिर अनेकों लोगों का सत्संग कर रहे। ध्रुव महाराज इसलिए दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर पाए क्योंकि नारद मुनि के सत्संग के बाद उन्होंने कोई असत्संग नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या, असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचार, असत्संग का त्याग करना ही वैष्णव का आचरण है। तो असत्संग लोग सोचते हैं मतलब हम मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे तो ये असत्संग हो गया, या फिर किसी भौतिकवादी व्यक्ति को देखेंगे नहीं तो ये असत्संग हो गया। आप देखें तो बहुत सारी चीजें भी असत्संग है। आजकल हमारे पास तो यंत्र हाथों में है, लैपटॉप में इंटरनेट है, ये भी असत्संग है। अब मोबाइल में पता नहीं अनेकों प्रकार के फेसबुक, ट्विटर, चिड़िया और भी पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं, वो भी असत्संग है। लोग सोचते हैं कि अरे हम तो क्या कर रहे हैं, भगवान की फोटोग्राफी तो देख रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं ऊपर नीचे, हम व्हाट्सएप में क्या कर रहे हैं, फोटोग्राफी तो देख रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको मालूम नहीं पड़ता कब बीच में माया एंटर कर जाती है और फिर वो असत्संग बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं इतने दृढ़ता पूर्वक भजन क्यों नहीं होता। तो बताया क्या, ये शाम तो अंत गतम पापम, पाप समाप्त हो जाएंगे तब कुछ काम होगा, लेकिन होते नहीं है। हम पाप एक तरफ समाप्त करते हैं, भजन करते हैं, भागवत सुनते हैं और एक तरफ फिर इन कार्यों में संलग्न रहकर हम पापों की वृद्धि करते रहते हैं। इसीलिए भजते माम दृढ़वताम स्टेटस जो है उस पर हम पहुंच नहीं पाते। जैसे तपस्याओं का हम बताया गया है, बहुत सुंदर भागवतम में वर्णन आया है सौरभी ऋषि का। जो सौरभी ऋषि थे उन्होंने क्या किया, तपस्या करी यमुना नदी के अंदर बैठ करके और कई वर्षों तक वो ध्यान करते रहे। पता नहीं 60,000 साल, पता नहीं कितने सालों तक उन्होंने तपस्या करी और सौरभी ऋषि तपस्या करते रहे। और फिर तपस्या करने के बाद उन्होंने एक दिन क्या देखा कि दो मछलियां, एक पुरुष और एक स्त्री, मादा और नर, क्या कर रही हैं, संग कर रही हैं अंडे उत्पन्न करने के लिए। और ये देखकर उनको लगा ये मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपना जीवन इस पानी के नीचे गुजार दिया, अब मुझे भी स्त्री संग करना चाहिए। तो तुरंत वो बाहर निकल कर आते हैं और वहां के राजा मानधाता से आकर कहते हैं मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा मानधाता कहते हैं इतने साल तुम तपस्या करके आए, इसके कारण तुम्हारा शरीर गल गया है, तुम्हारे शरीर पे लंबे लंबे बाल हैं, दाढ़ी इतनी बड़ी है, मेरी कोई भी पुत्री देखकर तुम्हें पसंद नहीं करेगी और जब तक पसंद नहीं करेगी मैं उसका विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो उनकी 50 पुत्रियां थी। तो जो ये सौभरी ऋषि थे इन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति तेज से तपस्या से तेज तो आ जाता है, तो इन्होंने तपस्या से क्या किया अपने शरीर को युवा बना लिया और युवा बनाकर उन 50 पुत्रियों को बुलाया उनकी मानधाता राजा की और कहा देखो मुझे। और उन्होंने देखा और सबने देखते ही कहा कितना तेजस्वी पुरुष है, हम सब इससे विवाह करना चाहते हैं। और 50 की 50 लड़कियों ने हाँ बोल दिया, तो उनको 50 स्त्रियों का संग करने का अवसर मिला और उन्होंने टोटल जो है बताते हैं 150 पुत्रों को उत्पन्न किया उन 50 स्त्रियों से। इतना संग करने के बाद में एक बार राजा मानधाता ने सोचा कि मैं जरा जाकर देखूं मेरी पुत्रियां सही से रह रही हैं या नहीं। जो जाकर देखा हर पुत्री के लिए 50 महल बनाए थे, जैसे भगवान कृष्ण ने द्वारका में 16,108 महल बनाए, ऐसे ही सौभरी ऋषि ने अपनी हर एक स्त्री के लिए एक एक महल बना दिया था, सोने का पूरा गोल्डन पैलेस। तो इस तरह से वो रह रहे थे। तो उन्होंने कहा राजा मानधाता ने पुत्रियां मैंने गलत जगह नहीं दी, अच्छे तरीके से रह रही हैं। लेकिन कुछ समय बाद सौभरी ऋषि को अपना तपस्या का जो याद आई और उन्होंने कहा मैं किस काम सुख में, किस इंद्र तृप्ति में फंस गया हूं, मुझे तो तपस्या नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तो क्या करनी चाहिए थी, ये मनुष्य शरीर से दिव्य तपस्या करनी चाहिए थी। दिव्य तपस्या का जो रिजल्ट है वो ये नहीं है विवाह कर लेना या फिर इस संसार में बहुत ऊंची गद्दी प्राप्त कर लेना, वो दिव्य तपस्या का फल ये है भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लेना, भगवान कृष्ण की भक्ति मार्ग को धारण कर लेना, यही दिव्य तपस्या है। लेकिन उनको बहुत गिल्टी हुआ, ग्लानी हुई और फिर वो वहां से वापस छोड़ करके चले गए। वापस जंगल जाकर उन्होंने दिव्य तपस्या में संलग्न रहे और कहते हैं ये उनका जो तपस्या थी उसको भंग होने के पीछे एक और कारण था, एक कारण था वैष्णव अपराध। एक बार जब वो यमुना नदी के जल में तपस्या कर रहे थे तो उस समय गरुण देव भगवान विष्णु के वाहन वहां आए और जब गरुण देव आए तो गरुण देव ने कहा मैं मछलियां खाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ये सारे मेरे पुत्र पुत्रियां हैं क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूं। तो उन्होंने उसको भी क्या समझा, ये सब कुछ मेरा है। अहम ममेति की भावना से तपस्या करने गए और फिर गरुण को कहा कि अगर तुमने यहां से एक भी मछली को खाया, भक्षण किया, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो इस श्राप के डर से गरुण वहां से चले गए। लेकिन गरुण है कौन, भगवान के भक्त है, तो उन्होंने क्या कर दिया, वैष्णव अपराध कर दिया। ऐसे ही हम भी कई बार तपस्या में तो लगते हैं, जब बड़े ध्यान पूर्वक करते हैं, अब भागवतम को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, इसको ग्रहण करते हैं, लेकिन साथ साथ में कई बार पाप भी नहीं करते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध हम कर देते हैं। किसी को भी सोचते हैं ये हो सकता है नया है, इसके कारण इसको समझाऊं, इसको डांटूं। तो समझाना एक अलग तरीका है, डांटना एक अलग तरीका है। जैसे ध्रुव महाराज के पिताजी उत्तानपाद, उन्होंने जब ध्रुव को गद्दी से निकाल दिया कि जाओ तुम अभी जाओ, अभी तुम्हारे लिए गद्दी नहीं, अभी तो ये उत्तम के लिए उत्तम गद्दी है, तो उनकी जो माता थी सुरुचि, उन्होंने कहा अगर तुम चाहते हो तो मेरी गर्भ से जन्म लो, इस तरह से उन्होंने उतार दिया। तब ध्रुव महाराज कोई भक्त नहीं थे, लेकिन सुनीति के कहने के अनुसार उन्होंने जाकर मधुवन में जाकर, जब बेटोर से चलकर मधुवन आते हैं और मधुवन में आकर ध्यान पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, तो नारायण ऋषि नारायण जो है नारायण मुनि, उनको क्या करते हैं, एक दिव्य मंत्र देते हैं। कौन सा मंत्र देते हैं, जो हम रोज बोलते हैं भागवतम में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण, द्वादश अक्षर मंत्र का उच्चारण करते करते ध्रुव महाराज को क्या हो जाता है, 6 महीने में भगवान मिल जाते हैं। और जब भगवान मिलते हैं तो भगवान के दर्शन पड़ने पर उनके मन में अभिलाषा थी, मुझे गद्दी चाहिए अपने पिता से बेहतर। लेकिन उनको वो जब भगवान को देखते हैं तो कहते हैं, मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, आप स्वयं भगवान मुझे मिल गए, अब मुझे कांच के टुकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो जब ये भक्त बन गए इतने प्रगाढ़, तो भगवान उनके जो पहले किए गए अपराध वाले लोग हैं, उनके पिता माता, उनको भी क्या मान रहे हैं, वैष्णव अपराधी मान रहे हैं। ऐसा वर्णन आता है, वैष्णव अपराधी मान रहे हैं। तो हो सकता है कोई नया व्यक्ति आज मंदिर में जुड़े हमारे से, या भगवत गीता वितरण करने जाते हैं, तो कोई व्यक्ति हो सकता है हमसे बहुत प्रश्न उत्तर करते हैं, लेकिन उसके प्रश्न उत्तर को सही तरीके से जवाब देना चाहिए, प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक ये सोचते हुए हम इसे कृष्ण भक्त बनाना चाहते हैं। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, लेना है लो, नहीं लेना तो आगे बढ़ो। इसे करने से हो सकता है कभी उस व्यक्ति ने भगवत गीता को ग्रहण किया और फिर वो अच्छा भक्त बना, हो सकता है हमसे अच्छा, हम तो भक्त नहीं है, लेकिन हमसे अच्छे भक्त बन जाए, आगे निकल जाए, तो फिर क्या होगा, भगवान काउंट करेंगे क्या, वैष्णव अपराधी। तो एक तो होता है मैनरिज्म, कि हम प्रभुपाद जी की संस्था से जुड़े हुए हैं, तिलक धारण करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, भगवद गीता वितरण करने जा रहे हैं, लेकिन एक तो मैनर फॉलो करना है, प्रभुपाद जी को फॉलो करना है, लेकिन साथ में इस वैष्णव अपराध के बारे में चिंतन करना चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रति अपराध ना हो जाए। जैसे अभी हमने द्वारका में एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म मतलब ना उसको भरते हैं, उसमें बनाया था वैष्णव अपराध अवॉइडेंस फॉर्म, तो उसमें कई चीजें, और रोज सब भक्त भरते हैं, वैष्णव अपराध ना हो जाए। तो रोज हमारे टेम्पल से मैसेज आता है और उस मैसेज को पढ़कर रोज शाम को उसे भरना होता है, आज मैंने कितने भक्तों के प्रति अपराध किया। और फिर भगवान रुक्मणी द्वारकाधीश के आगे आके शपथ खानी पड़ती है, इस हफ्ते जो फॉर्म भरा है मैंने वो सच्चा भरा है, अब भगवान के आगे तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो कई भक्त गायब हो जाते हैं, क्लास में नहीं आते उस वाली में, जब नहीं आते तो अपने आप पता चल जाता है ओहो अपराधी है ये लोग। तो फिर उस अपराध के सॉल्यूशन की मीटिंग होती है, उसमें फिर अलग अलग तरीके से होता है, जिस व्यक्ति के प्रति अपराध किया है, तो एक दिन पूछ रहे थे भक्त क्या करना चाहिए, तो वो बोल रहे थे कि नहीं प्रभु जी, अपराध हो जाता है उसके बाद तो बड़ा मुश्किल होता है उस व्यक्ति से जाकर क्षमा मांगना, ये तो एकदम ईगो अड़ जाती है। तो फिर कोई बोल रहा था प्रसाद सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, मैंने तो सिंपल सा कहा, मैंने कहा जाकर उस व्यक्ति के दोनों चरण पकड़ लेने चाहिए और मस्तक लगा देना चाहिए, फिर वो अपने आप ही समझ जाएगा कि अपराध किया है, क्योंकि मीटिंग में डिस्कस हुआ था, और फिर वो गले लगा लेगा अपने आप ही, क्योंकि वैष्णव तो क्षमा कर देते हैं। तो इस तरह से होती है। फिर बाद में कई महीनों बाद में जब इस पर बहुत चर्चा होने लगी, वैष्णव अपराध अवॉइडेंस, वैष्णव अपराध, लेकिन लोग मंदिर में तो अपराध नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑफिस में बाहर नए भक्त हैं उनसे अपराध कर रहे हैं, तो फिर डिस्कशन हुआ इस फॉर्म का नाम चेंज कर देना चाहिए, क्या रखना चाहिए, व्यक्ति अपराध अवॉइडेंस फॉर्म। और फिर अब इसी तरह से है, किसी भी व्यक्ति के प्रति अपराध किया तो फिर आपको वो फॉर्म में यस भरना पड़ेगा, यस मैंने अपराध किया। तो 15-20 पॉइंट है उसमें, अमोघलीला प्रभु जी ने बनाए हैं, तो उस पॉइंट को भरते हैं सारे भक्त बैठ के। तो इस तरह से व्यक्ति के प्रति भी अपराध किया तो वो वैष्णव अपराध ही माना जाएगा। तो हम जब भगवद्गीता वितरण करने जाए तो इन चीजों का भी हमको ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरह से तपस्याओं से बिखर कर व्यक्ति जब तक दिव्य तपस्या में संलग्न नहीं होता, उसकी जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो समाप्त नहीं होती है। जिस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन एक और आता है भागवतम में, महाराज ययाति की कथा आती है। महाराज ययाति जो थे वो नहुष और विरजा के पुत्र थे, और उन्होंने पांडवों के मतलब ये पूर्वज रहे हैं महाराज ययाति। उन्होंने दो शादियां की, एक उनकी पत्नी थी देवयानी और दूसरी थी शर्मिष्ठा। देवयानी जो थी वो शुक्राचार्य जो थे उनकी पुत्री थी, और शर्मिष्ठा जो थी वो वहां के राजा जो थे असुरों के राजा विश्वपर्वा उनकी पुत्री थी। तो अब ये महाराज ययाति जो थे एक बार जंगल में शिकार खेलने गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक लड़की जो है वो कुएं में गिरी हुई है। जब उस लड़की को उन्होंने बचाया तो पता चला कि वो शुक्राचार्य की पुत्री थी, और उनका नाम क्या था, देवयानी। अभी होता है ना फिल्मों में हीरोइन को बचा ले हीरो, तो फिर लव एट फर्स्ट साइट। तो उन्होंने देवयानी की इच्छा थी कि मैं ययाति महाराज के साथ विवाह करूं, और वो भी चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो गुरु की असुरों के जो गुरु थे उनकी पुत्री थी, और ब्राह्मण कुल हो गया मतलब अलग कुल हो गया, और यहाँ पर जो ये राजा है ये तो क्षत्रिय है, तो इन्हें क्षत्रिय वर्ग में ही शादी करनी पड़ेगी। जैसे भगवद गीता कहती है अगर क्षत्रिय ब्राह्मण अलग अलग वर्णों में शादी कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, उससे वर्ण शंकर उत्पन्न हो जाता है, पहले अध्याय में वर्णन आता है। तो क्षत्रिय है तो इनको शर्मिष्ठा से शादी कर सकते हैं, लेकिन देवयानी से नहीं कर सकते। तो फिर बाद में ये हुआ, राजा विश्वपर्वा ने कहा कि ठीक है आप शर्मिष्ठा से शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए क्योंकि आप राजा हैं, लेकिन देवयानी इनकी दासी बनकर चली जाएगी, इस तरह से उन्होंने कहा। तो फिर देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों का विवाह हुआ, लेकिन इस बात पर हुआ कि देवयानी जो है कभी भी उनके साथ महाराज ययाति संग नहीं कर सकते। लेकिन पता चला बाद में कि जो ये शर्मिष्ठा है उनके साथ नहीं, देवयानी शर्मिष्ठा को कभी छू नहीं सकते हैं, लेकिन देवयानी के साथ में वो विवाह कर सकते हैं। देवयानी से उनको दो पुत्र हुए, यदु और तरुवसु, और शर्मिष्ठा से उनको तीन पुत्र हुए, ध्रुव अनु और पुरु। तो जो ये राजा ययाति थे इन्होंने दोनों के साथ में पुत्र उत्पन्न किए। तो इस कारण से शुक्राचार्य को जब पता चला तो आकर उन्होंने उनको श्राप दिया, राजा ययाति को, कहा तुमने हमारी पुत्री के साथ क्या किया, छल किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बुजुर्ग बूढ़े बन जाओ, और तुम अपनी जो युवा अवस्था है इसको भंग कर दो, समाप्त कर दो, क्योंकि तुम अपने इंद्रियों पर क्या नहीं कर सके, इतनी तपस्या इतने बड़े राजा बनने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर सके, नियंत्रण नहीं कर सके। तो फिर जब उन्होंने श्राप दिया तो उनका शरीर पूरा कैसा हो गया, बूढ़े का शरीर बन गया। अब जब बूढ़े का शरीर बन गया तो महाराज ययाति सोचने लगे अब मैं क्या करूं, मैं तो इतना बुजुर्ग बन गया, अभी तो मेरी इच्छाएं बाकी हैं, इतनी इच्छाएं बाकी हैं, शादी करी, पांच पुत्र हुए, इतने वर्षों तक उनके साथ रहे, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। तो महाराज ययाति ने फिर अपने पुत्र पुरु से रिक्वेस्ट किया, विनती की, क्या करिए मुझको अपना युवा अवस्था दान कर दीजिए वापिस। तो पुरु ने कहा कि ठीक है आप मेरे पिता हैं, तो पिता होने के नाते मैं क्या करता हूँ, आपको अपने अपने यंग युवा अवस्था प्रदान करता हूँ। तो अपने पुत्र की युवा अवस्था लेने के बाद भी उन्होंने 1000 साल तक फिर स्त्री संग किया, और उसके बाद में जाकर एक दिन उनको इस बात का एहसास हुआ, क्या हुआ कि मैंने इतने वर्ष गुजार दिए इसी इंद्रिय सुख के अंदर, इसी जीवन को इसमें गुजार दिया, लेकिन ये जीवन मिला किस लिए था, दिव्य तपस्या करने के लिए, भगवान के प्रेम को पाने के लिए, भगवान के धाम वापस जाने के लिए, इस जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकलने के लिए, लेकिन हम उसी इंद्रिय सुख में फंस जाते हैं। तो हमें इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इस दिव्य तपस्या को ग्रहण करें। जैसे एक बार कथा आती है कि एक बार एक माता जी थी, वो आती थी मंदिर में रेगुलरली, अब कथा सुनती थी गुरु से अपने, तो गुरु भागवत कथा सुनाते थे और बहुत कथा सुनती थी, और उनकी विवाह हुआ था, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल, 4 साल, 5 साल गुजर गए, लेकिन कोई पुत्र पुत्री उत्पन्न नहीं हुआ, तो बहुत ही ज्यादा विवश हो गई कि कहते हैं तपस्या करते हैं, धाम यात्रा करते हैं, पुत्र प्राप्ति होती है, धर्म के कर्म करने से पुत्र पुत्री होते हैं, ये होता है, उसमें वृद्धि होती है, ये वृद्धि होती है, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब आते हैं हा? लेकिन असली भक्ति है भगवान किसी अभिलाषा के भगवान की सेवा करना, बिना किसी अभिलाषा के भगवान की कथा सुनना, बिना किसी इच्छा के भगवान के नामों का जप करना। तो वो आती थी तो एक दिन अपने गुरुदेव से बोली, गुरुदेव मेरे मन में एक अभिलाषा है। क्या? आप ये तो जानते हैं मैं तपस्या करती हूँ, माला करती हूँ, आती हूँ मंदिर में, लेकिन मुझे एक अभिलाषा है। क्या? कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में पुत्र हो जाए। हाँ, मेरी इस तपस्या का कम से कम इतना फल तो मिले कि मेरे घर में एक पुत्र उत्पन्न हो जाए। तो महाराज जो थे गुरुदेव, उन्होंने जवाब नहीं दिया और कहा कि ठीक है इसका उत्तर मैं तुम्हें कुछ देर बाद दूंगा। और कुछ देर बाद वो गुरुदेव के साथ में निकले, जैसे मॉर्निंग वॉक पे प्रभुपाद जाते थे तो भक्त जाते थे, तो वो भी अपने गुरुदेव के पीछे पीछे कई भक्त जय गुरुदेव करते हुए चल रहे थे, और साथ में ये स्त्री भी चल रही थी। तो रास्ते में गए तो देखा एक सुअर की फैमिली जा रही है, पिग, सुअर की फैमिली जा रही है, उसमें एक एक फीमेल, एक मेल, एक पुरुष, एक स्त्री, मादा और नर, और साथ में उनके 10-12 बच्चे जा रहे हैं। तो गुरुदेव ने उनको दिखाते हुए कहा कि ये देखो ये क्या है, इसने तो कोई माला नहीं करी, इसने तो कोई कथा नहीं सुनी, ये तो मंदिर भी नहीं गई, इसने तो कोई धाम यात्रा नहीं करी, इसने तो कोई गोवर्धन परिक्रमा नहीं करी, फिर भी इसके 12 बच्चे हैं। इसका मतलब इस संसार के इंद्रिय सुख की प्राप्त करना तपस्या का फल नहीं है। इसी के कारण लोग फंस जाते हैं। आप किसी से भी पूछे ना, अभी पीछे ही मैं राधा पाठ सरती मंदिर में एक दिन दर्शन कर रहा था, तो एक माता जी आ गई वहीं से, लोकल कम्युनिटी से, और कहती है बाबा मेरे लिए जरा प्रार्थना कर, मेरे बेटे की शादी हो जाए। तो मैंने कहा अच्छा कुछ डोनेशन चढ़ाओ तो अपने आप हो जाएगी। तो फिर ना बोली 10 रुपए है इसके खुले कर दे, 5 इसमें चढ़ाऊंगी, 5 उसमें चढ़ाऊंगी, 5 राधा पाठ सरती में, 5 सीता राम लक्ष्मण हनुमान में। तो मैंने कहा शादी करके क्या मिलने वाला है, फंस जाएगा खामखा, परेशान होगा, इतने लोगों ने करी है, सभी दुखी हैं। तो मुझे बुरा बोलने लगे, कहती अजीब सा व्यक्ति है, मेरे घर का सुख नहीं चाहता वैसे बोल रहा है। अरे भगवान की भक्ति इतने दिन से यहाँ नाक रगड़ रही हूँ, किस लिए रगड़ रही हूँ, इसीलिए तो आती हूँ मंदिर में ताकि मेरे पुत्र की शादी हो जाए। तो फिर पता नहीं है बाद में, मैंने कहा शादी हो गई तो फिर बाद में आपको परमानेंट इधर ही आना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा, क्योंकि फिर घर में बन नहीं पाएगी आपकी। तो फिर को बुरा बोला बोल के जाने लगी, कहते अजीब सा आदमी है, ऐसी बातें कर रहा है, मंदिर आती हूँ मैं, बाबा बन गया, पता नहीं किसने बना दिया इसको, अच्छा हरे कृष्ण, फिर वो चले गए। तो इस तरह से लोग हैं, इंद्रिय सुख के कारण बस ये सोचते हैं भक्ति का फल यही है। तो हमें समझना चाहिए कि दिव्य तपस्या, जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर वर्णन करते हैं, इनका नाम मात्र लेने से भक्तों का हमें भक्ति प्राप्त होती है। हरिदास ठाकुर जो इतने ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप करते थे कि उनको जो काजी था उसने 22 बाजारों में मारा। हम तो 22 बाजार में बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, बोला जाए यहाँ से जाइए 22 बाजारों में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, तो भक्त 2-3 बाजार में स्टॉल लगा के वापस आ जाते, ठंड बहुत पड़ रही है। 22 बाजार में अगर पता चले बुक देने पर मारेंगे आपको, पीटा जाएगा, तो व्यक्ति मंदिर से बाहर ही नहीं निकलेगा, अपने घर को ताला डाल के बैठ जाएगा। 22 बाजारों पर मारा गया उनको, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते रहे निरंतर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलते रहे निरंतर। और फिर जो पठान और जो काजी के युवक थे उन्होंने देखा इतना मारने पर भी इनके शरीर पर एक भी निशान नहीं आ रहा है, तो सोचा कि ये निशान जाते कहाँ है। तो बाद में हरिदास ठाकुर ने भी जब भगवान से पूछा तो भगवान ने दिखाया कि जितने भी कोड़े भगवान उनके ऊपर पठान या काजी के युवक मारते थे वो सारे भगवान अपने ऊपर ग्रहण करते थे। इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो जब दीक्षा प्राप्त करते हैं और जब भगवान के शरणागत होते हैं तो फिर क्या होता है, उनके गुरु उनके पापों को ग्रहण करते हैं। तो हमको कोई भी स्टेप उठाते वक्त एक भक्त को बहुत ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसका कष्ट भगवान को होगा, इसका गुरुदेव को होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया आपकी इतनी तबीयत खराब होती है इसका कारण क्या है, तो प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि मेरे जो दीक्षित भक्त हैं वो ध्यानपूर्वक तपस्या नहीं करते, भजन नहीं करते और गलत चीज़ों में एंगेज हो जाते हैं, ना जाने कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो उसका जो भी फल है वो किसको मिलेगा, प्रभुपाद जी को, गुरुदेव को मिलता है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने भजन में प्रगाढ़ता लानी चाहिए। वरना आजकल तो लोग ऐसे हैं, उनको भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ तो पता नहीं अजीब अजीब सी बातें करते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज एक कथा बताते थे, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं एक व्यक्ति थे, उन्होंने मतलब वो भक्त बन गए और फिर वो कलकत्ता में रहते थे, तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि तुम भी भक्त बन जाओ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे आप भी भक्त बन जाइए, तो लोग भाग दूर भागते हैं हमसे, नहीं नहीं हम भक्त नहीं बनेंगे, अभी भक्त बनने की उम्र थोड़ी आई है। तो इस तरह से उन्होंने भी बोला कि आप भक्त बन जाइए, भक्त नहीं बनेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। भक्त भी कई बार ऐसे डरा देते हैं लोगों को, नरक जाना पड़ेगा सीधा। नरक का नाम इतना मशहूर है, स्वर्ग और वैकुंठ तो लोग जानते ही नहीं, नरक ज्यादा जानते हैं, वहीं जाते आते रहते हैं इसलिए मालूम भी है उसके बारे में। तो नरक का जब वर्णन किया तो उन्होंने कहा कि पता है नरक जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ जो हमारे हमारे साथ में जो ये सुरेन बाबू रहते हैं, ये जो शराब पीते हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो उस व्यक्ति तो भक्त ने बोला सुरेन बाबू इतना शराबी, इतने शराब पीने वाला, उसकी तो गति नरक के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, नरक जाएगा। कह अच्छा सुरेन बाबू नरक जाएंगे, अच्छा तो फिर ये जो है वरुण बाबू? तो उन्होंने कहा कि वरुण बाबू, वरुण बाबू तो जुए की आदत में लत है, एकदम फंसे पड़े हैं, जुआ खेलते हैं। कह रहे हाँ मैं भी तो खेलता हूँ उनके साथ। कह रहे अरे आप छोड़ दो उनको, वरुण बाबू की तो गति है ही नरक में। कह रहे अच्छा, और जो है वो सुरेन बाबू? कह रहे सुरेन बाबू तो वेश्यावृत्ति करते हैं, स्त्री के पीछे पीछे जाते हैं, उनको तो मतलब एक मिनट नहीं लगाएंगे और यमदूत ले जाएंगे सीधा नरक की तरफ। कह रहा है शराब वाला भी नरक चला गया, जुए वाला भी नरक चला गया, स्त्री संगी भी नरक चला गया, तो मैं स्वर्ग जाके क्या करूंगा, मैं भी नरक चला जाऊंगा। तो इस तरह से भगवान महाराज कहते हैं लोग नरक जाने को तैयार है इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन वो समझते नहीं है ये सुख तो कुत्ते बिल्ली को भी प्राप्त हो जाता है। हमारा जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है ये दिव्य तपस्या करने के लिए प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या कर क्या समझ पाए, 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या कर वो ये समझ पाए, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने ना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। वो ये समझ पाए कि गोविंद ही कौन है, आदि पुरुष है। तो हमें भी इधर उधर की चीजें छोड़कर ध्यान पूर्वक दिव्य तपस्या में लगने का प्रयास करना चाहिए, और भगवत गीता वितरण करते रहें ध्यान पूर्वक। और रोज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि सबसे बेस्ट है मुझको प्रसन्न करना कि मेरी किताबों का, मेरी पुस्तकों का वितरण करना। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से, मैं आज सुबह पढ़ रहा था, मैसेज आता है जैसे रोज, तो उसमें बता रहे थे एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद कि एक बात बताइए कि भगवान को प्राप्त करना या भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के शरण में जाना, इसमें कितना समय लगता है? हाउ मच टाइम इट टेक्स? ऐसे लोग आते हैं तो पूछते हैं ना, आप हमको भगवान दिखा सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर, कोई व्यक्ति हो सकता है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड, प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, 1 सेकेंड में कोई भी कृष्णा कॉन्शियस हो सकता है, इन 1 सेकेंड शरणागत हो सकता है, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। प्रभुपाद जी ने कहा भगवत गीता का जो श्लोक है, बहुनान जन्म जन्मान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभम। भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ने यहाँ बोला बहुनान जन्म जन्मान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ज्ञानवान इंटेलिजेंट, तो इफ यू आर इंटेलिजेंट तो फिर 1 सेकंड लगेगा, इफ यू आर नॉन इंटेलिजेंट तो फिर पूरा बहुनान जन्म जन्मांतर घूमते रहेंगे, लेकिन जब इंटेलिजेंस आ गई उसके बाद 1 सेकंड लगता है व्यक्ति को भगवान के शरण में आने का। तो शरणागति का मतलब ये नहीं है कि हाथ खड़ा करके घूमते रहें या फिर प्रवृत्ति से हम कॉन्शियस होकर सरेंडर दिखाएं। सरेंडर होने का मतलब है चेतना से सरेंडर होना। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति मीन्स नॉट ऑन एक्टिविटी लेवल ओनली बट इन कॉन्शियसनेस लेवल। बुक दे रहे हैं, भूख देते वक्त क्या चेतना है, माला कर रहे हैं, माला करते वक्त क्या चेतना है, भोग लगा रहे हैं, भोग लगाते वक्त क्या चेतना है। तो इसीलिए हमारी सोसाइटी का नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ। भावना, क्या भावना से हम किसी कार्य को करते हैं, कार्य करना, ये एक्टिविटी सोसाइटी नहीं, वरना बोल सकते थे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण एक्टिविटी। क्या बोला, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, वस्त्र बना रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, माला कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, पर इम्पोर्टेंट है किस भावना से कर रहे हैं किसी भी कार्य को। हजार बुक्स बांटी लेकिन ये सोचकर बांटी कि मेरे को 1000 की माला मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, तो जीरो। और 10 बुक बांटी ये सोचकर कि मैं प्रभुपाद जी के भक्तों की वृद्धि करूंगा, तो बस उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो किस चेतना से हम उस कार्य को कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपने परिवार में इतने आसक्त हैं, अपने परिवार में, अपने उसमें, कि भगवद गीता वितरण के लिए जा जाकर बार बार बोलते हैं कि आप करिए करिए करिए, लेकिन लोग जो है ना निकल के तैयार नहीं है। जैसे एक बार अकबर और बीरबल जो थे वो अपना ब्यौरा करने निकले कि हमारे समाज में लोग कितना अटैच है अपने परिवार से। तो जब देखा तो दोनों कपड़े बदल के जाया करते थे, तो देखा कि एक औरत ने एक पुरुष को पटाक एक चाटा मार दिया, लड़ाई चल रही थी। तो भी अकबर को बहुत क्रोध आया, बोले स्त्रियां हमारे समाज में इतनी आगे बढ़ गई हैं कि पुरुष को थप्पड़ मार दिया, ये तो बहुत ही हद हो गई है, कुछ करो, एक मीटिंग बुलाओ सारे पुरुषों की। तो सारे पुरुषों की मीटिंग बुलाई गई, अकबर बैठ गए, बीरबल ने सबको बुलाया, सुनो सुनो सुनो, सारे पुरुषों को बुलाया गया है, स्त्री नहीं बुलाई गई, सारे पुरुष बुलाए गए। तो सारे पुरुष जब वहां पहुंचे तो उनसे पूछा गया, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी पत्नी से डरते हैं? तो एक मिनट में सारी कांग्रीगेशन इधर आ गए, सारे इधर आ गए लेफ्ट साइड में, लेकिन एक आदमी खड़ा रह गया। तो उन्होंने कहा कि कमाल है, आप हो एक व्यक्ति, आप ही हो असली भक्त, आप ही हो व्यक्ति, ऐसे ही होना चाहिए, हमें डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं बनाना, फिर भी एक सम्मान पुरुष होना चाहिए, स्त्री को शरणागत करना चाहिए, इस तरह से, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आप बताओ इन लोगों को, आप यहाँ क्यों खड़े रह गए? बोले मैं यहाँ इसलिए खड़ा रह गया क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा था भीड़ से अलग रहना। तो मतलब वो भी बेचारा डरता था। तो इस तरह से आज लोग इतने आसक्त हैं कि भगवद गीता उस दिन हमारे मंदिर में, जैसे द्वारका में, इस तरह से बोला गया कि सभी लोग डिसाइड करके फॉर्म भरिए, कितना कितना आप प्लेज करिए कॉन्ग्रीगेशन से, जनरल कितना कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो जैसे आश्रम में भक्त होते हैं तो उनसे पूछा गया कितना कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो मैंने देखा ध्यान से कि जितने भी पुरुष थे उनका प्लान था और माता जी ने भर दिया था अपना, और फिर वो फॉर्म लेकर मंदिर के क्लास खत्म होने के बाहर बाहर आए। मैंने कहा अभी तक भरा नहीं, कह रहे बस 5 मिनट भरते हैं। फिर माता जी के पास गए, बोले कितना भर दूं? भगवत डिस्ट्रीब्यूशन उनको करना है। माता जी ने भर दिया अपना, मैं 10 करूंगी, 20 करूंगी, 100 करूंगी, और प्रभु जी पूछ रहे। तो इतना भी डिपेंडेंट होना जो है वो गलत है, हमको डिपेंड होना चाहिए किसके ऊपर, कृष्ण के ऊपर, कृष्ण शरणागति बस। इसलिए भगवान कहते हैं मां शुचः, डरो मत, भगवान पर डिपेंड हो जाओ, न पत्नी पर न समाज पर, और फिर देखो दिव्य तपस्या का आनंद आपको मिलेगा। और दिव्य तपस्या का आनंद यही है, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, अमृत का स्वादन आस्वादन करेंगे जब हम भगवान के शरणागत होंगे। लेकिन अगर हम मां शुचः समझेंगे कि पत्नी ने अपने हाथ में लिखा हुआ है, मां शुचः पत्नी ने नहीं लिखा है, भगवान ने लिखा है, तो इसलिए हमें संसार से समाज से नहीं डरना है, हमें डरना है अगर तो भगवान से, और भगवान भी कह रहे हैं डरो मत, तो भगवान से प्रेम करना है, डरना नहीं है। यही दिव्य तपस्या का फल जिसके बारे में यहाँ पर ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।